समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। 2025 की आहट सुनाई देने लगी है, ये साल हमें अलविदा कहने को है। सबने साल का लेखा जोखा शुरू कर दिया होगा, क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा। दोस्तों, एक और चीज जिसका हिसाब हम सबको रखना चाहिए वो ये कि जाते हुए साल में इंसान के तौर पर कितने मुकम्मल हुए हैं हम। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो उम्मीद है कि आने वाले साल में बेहतर इंसान बनेंगे हम सब। फिलहाल तो पूरे देश में ठंड की आमद हो चुकी है, दिल्ली में भी जमकर ठंड पड़ रही है। तो श्रोताओं, गर्म चाय की प्याली के साथ तैयार हो जाइए। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की नई ताजा खबरें, विभिन्न राज्यों की परिक्रमा भी हम करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से। खेलों की दुनिया और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। और श्रोताओं, हम आपको एक धुन सुनाने जा रहे हैं जो आपने जरूर सुनी होगी। याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कहां सुनी है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि किसकी बनाई धुन है ये। एक हिंट आपको दे रहे हैं कि आज उस महान संगीतकार की जयंती है। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून मुदिता। एंड द म्यूजिक यू जस्ट हर्ड वाज ऑफ अ वेरी फेमस जर्मन कंपोजर, रिवियर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज म्यूजिक। एंड लेट मी टेल यू मुदिता दैट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर द एंड्यूरिंग लव फॉर हिज म्यूजिक लाइज इन इट्स profound emotional depth and intensity, and he possessed a unique ability to convey a wide range of emotions through his compositions, from the depths of despair to the heights of triumph. And today we celebrate his birthday all over the world. And like Mudita said, can you guess, listeners, which famous German composer we are talking about? Well, stick around, because in a death and birth chunk of this program we will talk about him in detail. Well, you're tuned to Parikrama 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Mudita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया।
राज्यसभा रिज्यूम स्पेशल डिस्कशन ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा सेज गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ईथॉस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
कोल्ड वेव कंडीशंस इंटेंसिफाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मिनिमम टेम्परेचर डिप्स टू 5 डिग्रीज एट सेवरल प्लेसेस, एयर पोल्यूशन ग्रिप्स दिल्ली, एक्यूआई लेवल ड्रॉप्स टू सीवियर कैटेगरी।
और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करते हुए फॉलो ऑन का खतरा टाला।
And now, Mudita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Fit India Movement.
तो अभिषेक, फिट इंडिया साइकिलिंग कार्यक्रम आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर रायसीना हिल्स और वापस स्टेडियम तक आयोजित किया गया, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विकसित राष्ट्र के निर्माण में फिटनेस के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि मोदी जी के आह्वान के तहत 2019 में पूरे देश में फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, खेल भागीदारी और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है ताकि देश को एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करके फिटनेस को बढ़ावा देना और प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
Yes, and the cycling event is a key program of the Fit India movement, aiming to build a healthier and greener. The movement focuses overall on the health aspects, sports aspect, and also the promotion of indigenous games of the country. The campaign led by Union Sports Minister Mansukh Mandavia aims to address pressing issues like air pollution and public health challenges while fostering a culture of cycling across the country.
मनसुख मांडविया ने कहा कि हमने हर हफ्ता एक घंटा साइकिल चलाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आज इसकी शुरुआत करते हुए देश भर में 1000 जगहों पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और साइकिलिंग के जरिए प्रदूषण का समाधान खोजना चाहिए। अभिषेक, बड़ी अच्छी और सही बात है ये, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं है और स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज या व्यायाम बहुत जरूरी चीज है और हम सब समझ ही रहे हैं अब तो कि साइकिलिंग उस दिशा में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो अच्छी सेहत के लिए, जैसा कि अभी हम बता ही रहे हैं कि शारीरिक अभ्यास को आवश्यक माना जाता है, तो जरूरी नहीं है श्रोताओं कि आप इसके लिए रोज जिम जाएं और कुछ हेवी एक्सरसाइज करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ आसान से और हल्के स्तर के एक्सरसाइज को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप शरीर को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं।
Absolutely, Mudita, and regular physical activity of moderate intensity, such as walking, cycling, or doing sports, has significant benefits for health. And at all ages, the benefits of being physically active outweigh potential harm, for example, through accidents. And some physical activity is better than none. By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quite easily achieve the recommended activity levels. And Mudita, I read somewhere that according to the World Health Organization, WHO, safe infrastructure for walking and cycling is also a pathway for achieving greater health equity.
Bilkul.
And for the poorest urban sector who often cannot afford private vehicles, walking and cycling can provide a form of transport while reducing the risk of heart disease, stroke, certain cancers, diabetes, and even death. And accordingly, improved active transport is not only healthy, but it is also equitable and cost-effective.
तो श्रोताओं, साइकिल चलाना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ हो सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं या फिर जिम सेंटर में इस तरह की गतिविधियां करते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने से लेकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने तक के लिए फायदेमंद अभ्यास है। ये HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, उसके स्तर को भी बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक रहने और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने से हृदय स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अब समय है विभिन्न राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो अभिषेक, हम कहाँ चल रहे हैं सबसे पहले?
Yes, we start off with a story, Mudita. The Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, IRCTC, Southern Zone, will operate an exclusive Bharat Gaurav tourist train in the name Mahakumbh Special in connection with the Mahakumbh Mela 2025 in Prayagraj, which is scheduled from Tamil Nadu, January 13 to February 26th. We have more from our correspondent, Shanti Ramesh.
Festivals or events which connect people all over the world. The Mahakumbh Festival at Prayagraj is one such which connects all parts of India. IRCTC is providing the golden opportunity to people of Tamil Nadu to be a part of the largest congregation of pilgrims in the world at Prayagraj. Mahakumbh next year is going to be the greatest congregation of pilgrims at Prayagraj. Railways have made arrangements for pilgrims from Tamil Nadu to reach Prayagraj and be a part of Mahakumbh. The IRCTC will run this special tourist train with 14 coaches from January 16 to 24, covering 8 nights and 9 days. The package tour will cover Varanasi, Prayagraj and Ayodhya. The special train with 1 tire AC coach, 10 sleeper class coaches, 1 pantry car, the 2 power cars will start from Trinalveli on January 16 with stops at Tengasi, Rajapalayam, Sivakasi, Virudhunagar, Madurai, Dindukal, Tiruchirappalli, Tanjavur, Kumbakonam, Mayiladuthurai, Chidambaram, Tirupadri, Puliyur, Viluppuram, Chengalpattu, Tambaram and Chennai Egmore. IRCTC Group General Manager of South Zone, P. Rajalingam Basu, told press persons in Trichy that the plan was to take 500 passengers in the special train. Bookings had already commenced, he added, and the air-conditioned and non-air-conditioned accommodation would be made at the destinations. The package cost per person in the economy category is ₹28,100 and ₹44,850 for the comfort category. On board and off board, South Indian vegetarian meals would be provided to passengers. Other salient features of this package are that tour escort and security would be provided in the train besides travel insurance. Arrangements have been made for the devotees to take a holy bath at Triveni Sangamam. Bookings for the tour could be done through IRCTC website www.irctctourism.com. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani Tiruchirappalli.
और अभिषेक, कार्यक्रम की शुरुआत में हम ठंड की बात कर रहे थे, तो अब हम चलते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां शुष्क मौसम के बावजूद शीतलहर का प्रकोप जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया है. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट.
हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही शीतलहर के बीच रोहतांग दर्रे के साथ ही कोकसर और ग्राम्फू में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि प्रदेश के इलाकों में कोहरा छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में जल स्रोत जमने लगे हैं. निचले मैदानी इलाकों में बारिश न होने से गेहूं की फसल की बिजाई प्रभावित हो रही है. मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने लेकिन शीतलहर के और बढ़ने की संभावना जताई है. रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला.
The Bengal government is developing a digital platform for continuous monitoring of the public infrastructure like hospitals, schools, ICDS centers and public buildings created by the state in various sectors, as well as for the timely maintenance and upgradation. We have more from a correspondent, Sushmita Mondal.
The Bengal government is developing a digital platform for continuous monitoring of the public infrastructure like hospitals, schools, ICDS centers and public buildings created by the state in various sectors, as well as for their timely maintenance and upgradation. The online system will act as a tool for rule-based inspection and assessment of public establishments to ensure higher quality of service delivery. According to the Secretariat sources, during the last 13 years, facilities pertaining to healthcare, education and others have been upgraded substantially in the state. Multiple new construction of hospitals, schools, ICDS centers and public buildings have been created through increased capital expenditure. The state has engaged supervisors for timely inspection of public infrastructure who shall serve as the primary source of information. According to a memorandum published by the State Finance Department, the features of the online system include mobile app-based inspection of public service delivery establishments, online monitoring and supervision at all hierarchical levels of the government, OTP-based authentication and automatic geotagging on inspected establishments. The system will be built on responsive design with the provision of scope to improve public service delivery. The state government has framed a standard operating procedure SOP for this mobile app and online-based application to purposefully capture and analyze the inputs and feedback of field inspections. The inspections may be carried out on a weekly basis. Officials at district, subdivision and block levels are required to make at least one such inspection within their jurisdiction every week without proper intimation. The inspecting official will use the mobile app and capture details of his visit, and the uploaded data shall be visible to all levels of hierarchies above the inspecting official. There will be a monthly review meeting at the subdivision level under SDO. Sushmita Mondal, Akashbani, Kolkata.
The Minister of Environment, Forest and Climate Change today organized the Eco Creativity and Innovation Hackathon in New Delhi. The hackathon aims to inspire young minds to tackle local environmental issues creatively through technology and innovation. The hackathon witnessed 35 innovative projects from across 14 states of the country. On the occasion, Secretary for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Leena Nandan, conferred awards to students for the innovations and problem-solving projects. Talking exclusively to Akashvani News, Ms. Leena Nandan said that the energy, spirit and curiosity among children are bringing the solution for tomorrow. She added that they will succeed in addressing the challenges of the present, like the environmental issues, pollution and climate change.
It is so energizing and so inspiring to see the kind of innovation and inventive, you know, the curiosity of the child and the way that curiosity and that spirit of innovation has come out with such good solutions, literally out of the box solutions. And it is children who are thinking far ahead of their times. So it is very encouraging, inspiring, and I would say reassuring that, you know, our children who are our citizens of tomorrow, with these kind of brilliant ideas and this desire to do something which is very meaningful for the earth, they will certainly succeed in addressing many of the challenges that we are facing with respect to environment, pollution and climate change.
Our participant from Haryana, Saideep Goyal, speaking to Akashvani News, said that he has prepared a solar model that will protect people from air pollution.
In this model, I have used a solar panel, but it is not a normal solar panel. It is a rotatory solar panel which rotates according to the sunlight. Wherever the sunlight will be more, it will rotate to the direction of it, and it will store the energy in the batteries, and then that batteries will be used for the purification system. The purification system contains two levels of the cleaning. So we have first level of like a filter, HEPA filter we have used. In that filter, we can capture like 99.97% of the particles. It matters of the size above 0.03 microns, but doesn't kill the virus, the main illness causing germ. So for that we have used UV rays at our second level. So by using this self-sustaining units, we can clean up to 60 to 80% of our pollution of our country.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
A revolutionary freedom fighter who was the mastermind behind the Karkuri conspiracy and Dakshineshwar bombing.
Born in 1901 in Pabna district of the Bengal Presidency, Lahiri was sent to Varanasi for studies. During his studies, he came into contact with Sachindranath Sanyal, the co-founder of the Hindustan Republic Association, HRA, and thus began his revolutionary career. Lahiri became the district organizer for the HRA in Varanasi. He used several aliases like Charu, Jawahar and Jugal Kishore.
Along with Ashfaq Ullah Khan, Ram Prasad Bismil and Roshan Singh, Rajendranath Lahiri helped carry out the Karkuri robbery of 1925. It was Lahiri who stopped the train by pulling the chain from a second-class compartment and then helped the revolutionaries in action.
Lahiri was later arrested from a bomb factory in Dakshineshwar, Calcutta, and was awarded a 10-year sentence. However, after some time, the British authorities identified him as one of the revolutionaries involved in the Karkuri robbery. Lahiri was then tried along with Ashfaq Ullah Khan, Ram Prasad Bismil and Roshan Singh. They were sentenced to death.
Lahiri was shifted to Gonda District Jail for execution. The British police got a whiff of the plan of the revolutionaries to free Lahiri. Jail authorities decided to hang Lahiri before the prison break plan could be put into action, and Lahiri was hanged 2 days prior to the scheduled date. Lahiri was only 24 years old when he attained martyrdom. We paid tribute to the great martyr.
On December 17, 1927, Bhagat Singh and his associates shot John Saunders. In Lahore, Lala Lajpat Rai was hit during a lathi charge while leading an agitation against the Simon Commission.
Simon Commission!
Lala Lajpat Rai later succumbed to his injuries. Thus, Bhagat Singh and his comrades vowed to avenge Lala Lajpat Rai's death.
Bhagat Singh conspired with revolutionaries like Shivaram Rajguru, Sukhdev Thapar and Chandrasekhar Azad to kill James Scott. James Scott was the superintendent of police who had ordered lathi charge on Lala Lajpat Rai. However, in a case of mistaken identity, they shot John Saunders, who was an assistant superintendent of police. After the incident, the group escaped with the help of Durgavati Devi. The police launched a massive search operation to catch them but could not arrest. Reminding the significance of the incident, Jawaharlal Nehru said that Bhagat Singh did not become popular because of his act, but because he seemed to have vindicated the honor of Lala Lajpat Rai and through him, of the nation.
Today we also remember the revolutionary journalist and a close associate of Sri Aurobindo, Sakharam Ganesh Deuskar. He was born on the 17th of December 1869 in a village near Deogar, Jharkhand.
His name signifies the confluence of Bengali and Marathi. His ancestors had migrated from Deos village in Maharashtra and settled in Karon in Bengal, hence the surname Deuskar.
One of Deuskar's works which most influenced the national awakening was Deshor Kotha, published in 1904. It was translated in Hindi as Desh Ki Baat. Sakharam Deuskar composed this historical work to depict the ruin of India's economy by the British. Deuskar considered Bal Gangadhar Tilak as his political guru. Sakharam Deuskar breathed his last in 1912. We pay tribute to the great patriot.
In business news today, benchmark domestic equity indices today ended around 1.3% lower, extending their losing streak for the second straight session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex tanked 1,064 points to close at 80,684. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 332 points to end at 24,336. In the global crude market, Brent crude was trading 0.73%, down at $73.37 per barrel, and WTI crude lost over 0.8% to trade at $70.09 per barrel when reports last came in.
और खेल के मैदान की हलचल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है. मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम अभी भी 193 रन पीछे है. और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. आज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद इकबाल अहमद खां की पुण्यतिथि है, जिन्हें दिल्ली घराने का खलीफा कहा जाता था. हम अपने श्रोताओं को बता दें कि संगीत के दिल्ली घराने की शुरुआत हजरत अमीर खुसरो से मानी जाती है. खान साहब को शास्त्रीय गायन की उनकी शैली के साथ ही ठुमरी, दादरा, टप्पा, भजन और गजल के लिए भी जाना जाता था. तान प्रधान गायकी जो दिल्ली घराने की खासियत है, उसमें उनका जवाब नहीं था. आकाशवाणी के शीर्षस्थ गायकों में भी शामिल थे. कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों के लिए भी उन्होंने संगीत तैयार किया, जैसे अमीर खुसरो, इंद्र सभा, पुलिस फाइल से ये दिलों के रास्ते. उन्हें कुतुब मीनार और उसके स्मारक और मूर्तियां नामक वृत्तचित्र के लिए 1988 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था. चांद रंग के अब ला श्रोताओं अब हम आपको बता रहे हैं जो हमने शुरुआत में आपको धुन सुनाई थी उसके बारे में अभिषेक आपको बताएंगे.
Absolutely, it's not suddenly Ustad Iqbal. Mudita, it was the German composer we were talking about in the beginning of a program is of course Ludwig van Beethoven, who was born on this day in 1770. He was a German composer and pianist. He's one of the most revered figures in the history of Western music. His works rank among the most performed of the classical music repertoire and span the transition from the classical period to the romantic era in classical music. His early period during which he forged his craft is typically considered to have lasted until 1802. Born in Bonn, Beethoven displayed his musical talent at a young age. He was initially taught intensively by his father, Johann van Beethoven, and later by Christian Gottlob Neffe. Under Neffe's tutelage in 1783, he published his first work, a set of keyboard variations. Let's listen in to a bit of Symphony No. 9 in D minor by Beethoven.
और श्रोताओं आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि एक उम्र के बाद बीथोवन की सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी और अभिषेक कमाल की बात है कि उसके बावजूद उन्होंने वो धुने वो म्यूजिक तैयार किया जो आज तक हम लोग सुन रहे हैं. तो श्रोताओं अब हम चलते हैं हिंदी और मराठी के सबसे सहज अभिनेताओं में से एक डॉक्टर श्रीराम लागू की आज जयंती है. 42 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पहले वे एक ENT सर्जन थे. डॉक्टर लागू ने अपने फिल्मी करियर में किनारा, सदमा, मुकद्दर का सिकंदर सहित 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया. 1978 में फिल्म घरौंदा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया. सिनेमा के अलावा वे मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से जुड़े रहे और अभिषेक मराठी थिएटर में तो उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है. मशहूर नाटक नट सम्राट में उन्होंने गणपत वेलवरकर की भूमिका निभाई थी जिसे मराठी थिएटर में मील का पत्थर माना जाता है. आइए सुनते हैं इसी नाटक का एक डायलॉग डॉक्टर लागू की आवाज में.
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. जगाव की मराव हा एकच सवाल आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगाव बेशरम लाचार आनंदान का फेकून द्यावा देहाचं लखतर मृत्यूच्या काळ्या शार डोहामध्ये आणि करावा शेवट सर्वांचा एकाच एकाच प्रहारान माझा तुझा याचा आणि त्याचा.
Yes, and Suresh Oberoi was born on this day in 1946. He's an actor and politician who appeared in Hindi films. He's the recipient of the 1987 National Film Award for Best Supporting Actor. He started his career in radio shows, modeling, and later moving to Bollywood, making him a popular character actor in the 1980s and much of 1990s. And he's the father of actor Vivek Oberoi. Let's listen in to a dialogue from his film, Tezab.
Ye mera 500 ki chaal.
Kya ho raha hai, Gupta?
कुछ नहीं यार, थोड़ी सी तफरी और क्या.
जब ड्यूटी तफरी बन जाए और जुआरी वर्दी से डरने की बजाय वर्दी के साथ बैठकर जुआ खेलने लगे तो दाव पर चंद सिक्के नहीं मुल्क की किस्मत भी लग जाती है. गुप्ता,
तुम साबित क्या करना चाहते हो गगन सिंह?
कुछ नहीं, तुमने पुलिस की ताकत दिखाकर सच.
और आज जयंती है रहीम और अब्दुल रहीम खान खाना की. रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें साहित्य की दुनिया में रहीम के नाम से जाना जाता है, अकबर के 9 रत्नों में वे अकेले ऐसे रत्न थे जिनका कलम और तलवार दोनों पर समान अधिकार था और इनकी कार्यक्षमता से खुश होकर इन्हें खान खाना की उपाधि दी गई थी. रहीम के भक्ति और नीति के दोहे तो आज भी लोगों की जबान पर है. गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से सीधी साधी भाषा में कही है. चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साहा. वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे. मुस्लिम होकर भी कृष्ण के भक्त थे और श्री कृष्ण पर उन्होंने काफी कुछ लिखा. उनकी रचना मदनाष्टक तो खास तौर से श्री कृष्ण पर लिखी गई थी.
Yes, and Neeraj Pandey was born on this day 1973. He is a film director, producer and screenwriter who works in Hindi cinema. Pandey made his directorial debut in A Wednesday, which was largely praised by critics and which later became a recipient of many accolades. His second film was special Special 26, which was followed by Baby. Both of them received critical acclaim and became commercial success. And he served as a producer on Rustam. Pandey returned to directing in 2016, helming the biopic movie MS Dhoni, The Untold Story, based on Indian cricketer MS Dhoni, which fared well critically and commercially. And besides being a filmmaker, Pandey is also a writer and has written a novel named Galip Danger in 2013. Let me also tell our listeners, Mudita, that John Abraham was born on this day in 1972.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।